अगले कवि का नाम है श्रीकांत वर्मा। प्रश्न, श्रीकांत वर्मा का जीवन धारा पर प्रकाश डालिए। श्रीकांत या श्रीकांत वर्मा के भाषा शैली का वर्णन कीजिए। उत्तर, श्रीकांत वर्मा आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के अग्रणी कवियों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। इनके काव्य साहित्य में मुख्य विशेषता द्वंद्वात्मक संघर्ष रहा है। श्री वर्मा विवेचनात्मक भाव के प्रमुख कवि माने जाते हैं। समस्त छायावादोत्तर कवियों की भांति उनकी कविताओं में भी यथार्थवाद प्रस्फुटन चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, किंतु श्री वर्मा का यथार्थ परंपरावादी ऐतिहासिक मूल्यों में ओतप्रोत है। श्री वर्मा के काव्यगत विशेषताओं में सर्वप्रथम एवं मुख्य व्यवस्था यह रही है कि उनमें वैचारिक द्वंद्व चरम सीमा तक पहुंचती है। इनकी कविताओं में विचार एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सदैव मन मस्तिष्क की ओर उद्वेलित करता रहता है। वह वैचारिक क्रांति को एक धरातल प्रदान करना चाहता है, किंतु वह वैचारिक क्रांति कुछ यथार्थ में सत्यता का निरूपण हो। वे व्यर्थ को के विचार जिसका कोई गुरुतम अर्थ न हो उसे महामारी के रूप में स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं, तुम्हारा एक शत्रुपल रहा है, विचार और याद करो, आजकल महामारी की तरह फैल जाता है विचार। फलतः विचार कोई सार्थक स्वरूप होना चाहिए, न कि कोई ऐसा स्वरूप जिसका न तो जीवन में, न वर्तमान में, न भविष्य में कोई महत्व नहीं। श्रीकांत वर्मा निसंदेह रूप में आधुनिक काव्य साहित्यकारों के मध्य एक क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक माने जाते हैं। वर्तमान जनतांत्रिक युग में सर्वत्र एक युद्ध छिड़ा है, युद्ध विचारों का है, युद्ध कार्यों में है, युद्ध जीवन के हर क्षेत्र में है। श्री वर्मा मार्क्स के द्वंद्वात्मक संघर्ष से अलग हटकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत काल से लेकर वर्तमान काल के संघर्षों को एक नए यथार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। द्वंद्व भाव की विवेचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है, एक तरफा होती है हत्या, एक तरफा जय, एक तरफा दर्प, एक तरफा भय, एक तरफा विधवाएं, एक तरफा सधवाएं, एक तरफा होता है विलाप, एक तरफा संताप, एक तरफा हर्ष, एक तरफा संताप, एक तरफा पश्चाताप, एक तरफा होता है धर्म, एक तरफा शर्म, दोनों और मृतकों की संख्या समान नहीं होती। उपयुक्त काव्य भाव का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि श्री वर्मा की यथार्थवादी विवेचना वैज्ञानिक एवं तार्किक है। यथार्थवादी सत्य जो तार्किक एवं वैचारिक मूल्यों पर आधारित है, वह हकीकत में उनकी काव्य कला के भाव पक्षों की अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला है। आज के समाज में सर्वत्र भय व्याप्त है, कोई भी सत्य की स्थापना हेतु समुचित साहस नहीं जुटा पा रहा है, किसी को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है और न ही किसी को चल रही व्यवस्था को छोड़ने का अधिकार है। एक कटु व्यंग करते हुए श्री वर्मा ने लिखा है, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। श्री वर्मा के काव्य में व्यंग्य एक शस्त्र है। अपने कटु सत्य व्यंग के माध्यम से उन्होंने समाज के उस सच्चाई को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जिससे वर्तमान समाज के जनतांत्रिक मूल्यों की सही स्थापना हो सके। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। श्री वर्मा का वैचारिक संघर्ष अनुक्ति के माध्यम से विकसित होता है। आज का वर्तमान मदिरा प्रमाद एवं आलस्य में पूर्ण डूब चुका है। युवा पीढ़ी मात्र दिवा स्वप्न में आबद्ध हो चुकी है। सर्वत्र अराजकता, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था का साम्राज्य व्याप्त हो चुका है। मात्र शोर ही शोर सर्वत्र सुनाई पड़ रहा है। वर्तमान शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था मदिरा एवं प्रमाद में आबद्ध होकर धर्मविहीन हो चुका है। मानव मात्र त्राही त्राही कर रहा है, उसे कोई मार्ग नहीं दिखलाई पड़ रहा है। समाज में एक क्रांति की लहर बढ़ रही है जिससे चारों ओर अशांति का वातावरण व्याप्त होने लगा है। हम क्या करें, कानून को तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें। आज का युवा वर्ग वैचारिक द्वंद्व से बंधा हुआ है, वह एक मार्ग की तलाश में है। चूंकि वर्तमान व्यवस्था में चरित्र निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी अपनी अपनी नीतियाँ रखते हैं, सभी का अपना सिद्धांत और सभी का कहने का अपना ढंग है। स्वतंत्र समाज में सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी हो, फलतः हर व्यक्ति का अपना एक विचार है, वह उसका कर्ता धर्ता भर्ता आदि है। फलतः वह मात्र अपने ही नीतियों का पालन करता है, किसी दूसरे को किसी स्तर पर स्वीकार नहीं करता, फलतः सर्वत्र संघर्ष है। अतः कौन सा मार्ग उचित है? श्री वर्मा जी लिखते हैं, मित्रों दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें। श्री वर्मा, वर्तमान शासन प्रशासन राजनयिक व्यवस्था एवं उनके स्वतंत्र आचरण के कूटनीति दुर्नीति के पूर्ण प्रभाव को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किए हैं। वे आज की व्यवस्था को कट आलोचना करते हुए कहते हैं कि वर्तमान में चोर मचाए शोर की भांति कहावत पूर्ण सत्य सिद्ध हो रहा है। श्री वर्मा राजनीतिक पहलू को बड़े ही गंभीरता से अध्ययन करते हैं। वर्तमान तंत्र पूर्णतः अव्यवस्थित हो चुका है और श्री वर्मा इन तंत्र का बड़े ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। उस पर अपनी राय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आज शासक पूर्णतः राग रंग में डूबा हुआ है, उन्हें मदिरा प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सकें, तब हम क्या करें। उपयुक्त विवेचनाओं के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री वर्मा के काव्यों में वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां एवं राजनीतिक गतिविधियां तथा राजनीतिक लोगों का जीवन स्वरूप मात्र निजी स्वार्थ तक आकर आबद्ध हो चुकी हैं। कला पक्ष की दृष्टि से श्री वर्मा की काव्य अत्यंत ही प्रभावशाली मानी जाती है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, श्री वर्मा के काव्य की भाषा अन्य छायावादोत्तर कवियों से अधिक चुटीली एवं हृदयस्पर्शी है। श्री वर्मा के काव्य की भाषा परिमार्जित शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है, शब्दकोश से विशेष रूप से चयनित कर पिरोए हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से मोतियों के रंग बिरंगे हार में एक एक मोती चुनकर यथास्थान गूंथे हुए होते हैं, वैसे श्री वर्मा के मुक्तक काव्यों में एक एक शब्द बड़े ही कुशलता से चयनित कर पिरोए गए हैं। जैसे दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें। उपयुक्त काव्य में मात्र भाषा का चयन ही प्रभावशाली नहीं है, अपितु उसमें लय का भी सुंदर तालमेल है जो पाठक के हृदय तंत्र को झंकृत कर देता है। आधुनिक कवियों की भांति उन्होंने चलतू उर्दू फारसी एवं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किए, किंतु बहुत ही यदाकदा एक तरफा दखल कानून टोकना आदि शब्द कहीं कहीं प्रयोग किए गए हैं, किंतु वे बहुत ही प्रचलित हैं। संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग खुलकर किया गया है। श्री वर्मा की काव्यकला की शैलियाँ एक विचित्र भाव प्रभावित हैं, मूलतः विचारात्मक भावात्मक विवेचनात्मक गवेषणापूर्ण व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ ही साथ उनकी सबसे प्रभावशाली शैली समस्या समाधान की शैली है। वे पहले छायावादियों की भांति रहस्य उत्पन्न करते हैं, जैसे कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। यह पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि कोई न छींके, वह रहस्य का कारण जानना चाहता है और वे समाधान करते हुए उसका बड़ा ही मार्मिक उत्तर देते हैं। श्री वर्मा के काव्य में रस की निष्पत्ति बड़े ढंग से हुई है। पाठक के मन में जिज्ञासा भरपूर विकसित होती है। करुण शांत विभत्स वीर एवं श्रृंगार रस का इनकी काव्यों में प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास द्वैतवादी विरोधाभासी भ्रांतिमान एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग सफल रूप में किया गया है। छंद मूलतः आधुनिक कवियों की भांति मुक्त ही हैं, कहीं कहीं अगीत के प्रभाव हैं तो कहीं पूर्णतः गद्यात्मक है। इनकी अगली कविता का शीर्षक है हस्तिनापुर का रिवाज। मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई सुनता नहीं। हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं, जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तब सुनो या मत सुनो, हस्तिनापुर के निवासियों होशियार, हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है विचार। और याद रखो, आजकल महामारी की तरह फैल जाता है विचार। कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत काव्य हस्तिनापुर का रिवाज कविवर श्री श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है। यह काव्य एक कटु व्यंग काव्य है, जिसमें कवि का विचार है कि हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं है, अर्थात यह एक ऐसा नगर है जहां कोई सुनने वाला ही नहीं है। कवि अनुक्ति के माध्यम से वर्तमान हिंदुस्तान की दिन दशा का वर्णन करता है। यहां के समाज में सब कुछ है किंतु धर्म ही नहीं है। यहां के नागरिकों को कवि सतर्क करता है कि यहाँ एक ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है जो मात्र विचार ही विचार करता है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वह विचार भी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रस्तुत मुक्तक काव्य कविवर श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता हस्तिनापुर का रिवाज वर्तमान समाज पर एक कटु व्यंग है। कवि श्री वर्मा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यह ऐसा स्थल है जहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। हस्तिनापुर भारत की एक प्राचीन नगरी है जहाँ कौरववंशी शासन करते थे। महात्मा भीष्म उस शासन के मुख्य नियंता थे। उस साम्राज्य की दशा यह थी कि कोई वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं था। राजा धृष्टराष्ट्र अंधे थे एवं उनका पुत्र दुर्योधन, जो वास्तव में शासन करता था, वह अधार्मिक कार्यों में सदैव लिप्त रहता था। महात्मा भीष्म सदैव उसे नसीहत देने का प्रयत्न करते थे। उनका कथन था कि यदि धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। इस बात को कोई वहाँ सुनने वाला नहीं था। उपयुक्त भावना से प्रभावित होकर कवि कहता है कि वर्तमान हिंदुस्तान की दशा भी हिंदुस्तान के समान हो चुकी है, हस्तिनापुर के समान हो चुकी है। इस राज्य में कोई सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों की नियुक्तियां जन समाज के समस्याओं के समाधान हेतु हुई वे या तो भरे हैं या अनसुनी करने के लिए बैठे हैं, उन पर कोई असर नहीं है। किसी को भी अपने कार्य धर्म का ज्ञान नहीं है, सभी अपने धर्म के विपरीत कार्य में संलग्न हैं। अंत में कवि जन समाज को संबोधित करता हुआ कहता है कि किसी को अपने धर्म का ज्ञान हो अथवा न हो, किंतु स्वयं होशियार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसा समाज का शत्रु पल रहा है जो मात्र विचार है, जिसमें न तो कोई धर्म शक्ति है और न ही कोई कार्य शक्ति। फलतः इन खोखले विचारों से न तो कभी कोई उन्नति हो सकती है, न ही वह समाज को उद्बोधित कर सकता है। यहीं पर श्रीकांत वर्मा की कविता एवं उनकी व्याख्या समाप्त होती हैं।